ओम श्री परमात्मने नमः। पांचवा अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की बात भी कहते हैं और कर्मियों के अनुष्ठान की बात भी कहते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही समान रूप से कल्याण करने वाले हैं, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? जो कर्मयोगी राग और द्वेष नहीं करता वह नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि वह द्वंद्वों से रहित होने से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों कल्याण करने वाले हैं, तो वे दोनों किस तरह कल्याण करने वाले हैं? सांख्य और योग को अलग अलग कहने वाले लोग बालक अर्थात ना समझ हैं, पंडित नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी स्थित होने वाला साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगियों को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो सांख्य और योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है? कर्मयोग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का होना अर्थात समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु जो योग युक्त पुरुष सिद्धि असिद्धि में सम हो जाता है वह समरूप ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। वह कर्मयोग से कैसे प्राप्त कर लेता है? मन और इंद्रियों को जीतने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित करने वाला योग युक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता अर्थात तत्व को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है? सत अस के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता सुनता स्पर्श करता सूंघता खाता जाता सोता श्वास लेता बोलता मलमूत्र का त्याग करता ग्रहण करता नेत्रों को खोलता और मींचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वर्त रही हैं, ऐसी धारणा करके और स्वरूप भूत में कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करके कर्मों से निलिप्त रहता है। कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, तो वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह कर्मों से लिप्त नहीं होता। भक्ति योगी तो आपके अर्पण करने के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। परम कर्मयोगी किस उद्देश्य से कर्म करता है? कर्मयोगी शरीर मन बुद्धि के साथ ममता न करके और फलाशक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है, तो वह सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म फल में बंध जाता है। सांख्य योगी कर्म करने का क्या प्रकार है भगवान? शरीर इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को नवद्वारों वाले शरीर में छोड़कर न करता और न करवाता हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह सांख्य योगी न कर्म करता है और न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो कर्म करता और करवाता होगा। वह परमात्मा न किसी के कर्तृत्व की रचना करता है, न किसी से कर्म करवाता है और न किसी कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है, किंतु जीव अपने अपने स्वभाव अर्थात आदत के कारण ही कर्म करते हैं। अपने में कर्तृत्व मान लेते हैं, फिर कर्मों के फल का संयोग अपने आप बन जाता है। वह परमात्मा किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करता, पर प्राणियों के कर्म फल को तो ग्रहण करता ही होगा। वह व्यापक तत्व किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोगता मान लेते हैं, जिससे वे जन्मते मरते रहते हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपने को कर्ता भोगता मानकर मोहित होते रहते हैं? नहीं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह उस कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित तत्व को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसका अनुभव करा देता है। उस ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है? जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे तत्परायण साधक ज्ञान के द्वारा पुण्य पाप रहित होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनका ज्ञान व्यवहार काल में कैसे रहता है? वे तत्व के पुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गाय हाथी कुत्ते और चांडाल में एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं। वे ऐसे समदर्शी क्यों होते हैं? जिनका मन सर्वथा साम्यावस्था में अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने संसार को जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण की ब्रह्म निर्दोषम है, इसलिए वे समरूप ब्रह्म में स्थित हैं। ऐसी साम्यावस्था में स्थित होने का उपाय क्या है? व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जो राग द्वेष नहीं करता, वह मोह रहित और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष परमात्मा में ही स्थित रहता है। वह स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है भगवान? जो बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वह अपने आप में सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों में आसक्ति कैसे न करे? जितने संबंध जन्य सुख हैं, वे सभी केवल दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, इसलिए विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता। रमण न करने से क्या होगा? जो मृत्यु के पहले पहल काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, योगी है और वही नर है, बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है? बाह्य पदार्थों में आसक्ति न होने से उसको परमात्म तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्मा में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं? जिनकी इंद्रियां वश में है, जिनकी प्राणी मात्र के हित में रहती है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके मन की दुविधा मिट गई है, ऐसे ऋषि निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने के लक्षण क्या है? जिनका अंतकरण वश में है, जो यत्न में लगे हुए हैं, जो राग द्वेष रहित हैं, उनको जीते जी और मरने पर निरंतर निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त होता है। किसी दूसरे साधन से यह सुख प्राप्त होता है क्या? हाँ, ध्यान योग से भी यह सुख होता है। बाह्य विषयों को बाहर करके अर्थात मात्र प्राकृत विषयों का त्याग करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को अर्थात रेतक पुरुष को समान करके जिसके मन बुद्धि इंद्रियां वश में है, ऐसे वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्ष परायण साधक सदा मुक्त ही है। और भी दूसरा कोई शुभ उपाय है? जिससे वह सुख सबको मिल जाए। हाँ, भक्ति है जो मुझे संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर और प्राणी मात्र का परम स्वरूप जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे शांति मन अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है।
गीता माधुर्य, लेखक और बोलने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज।